फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब, काफ़ी ज़्यादा पिछले से मिलती है लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन समता नजा, दोहराइएगा आप भी, मन समता नजा, मन मैंने जिसने समता खामोशी इख्तियार की, नजा वो निजात पा गया, यानी खामोशी बेहतर है। अब आप देखिए, ये है वो हदीस जिसको पढ़ के मैं हमेशा सोचती हूँ कि अल्लाह के नबी के अल्फाज ही इतने थोड़े हैं। मन समता नजा भी आता है और एक और रिवायत में नजा मन समता भी आता है, वही लफ्ज है लेकिन फर्क आगे पीछे का है। अब आप देखिए कि निजात पा गया जो खामोश रहा, किस चीज से निजात पा गया? पहली बात देखिए, वक्त जाया होने से निजात पा गया। हम जब बातें करते हैं तो हमारा वक्त कितना लगता है, आप इमेजिन कीजिए, कोई आपको मिलने आया, हाल चाल पूछा, पानी पूछा, कुछ खातर की, आप बातें नहीं ज्यादा कर रहे इधर उधर की, 15-20 मिनट में कहेंगे आप चलते हैं। अमूमन जो लोग घंटों बैठते हैं और आधी आधी रात तक फिर दावतों के बाद बैठे रहते हैं, वो बोला क्यों बैठते हैं, बातें बातें बातें। आप कम बोलेंगे ना, बहुत कम लोग आपके पास बैठेंगे और इंशाल्लाह आप लोग वक्त जाया होने से बच जाएंगे। फिर आप किस चीज से निजात पाते हैं? गलतियों से निजात पा जाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब हम कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, तो कई इल्जाम हम पे नहीं लगते हैं। कोई कहेगा ये तो बोली नहीं, इनकी क्या बात करें, क्योंकि जो बहुत बोलते हैं ना, बाद में आप देखिए झगड़े उनके सर पे पड़ते हैं, ये बोली थी, इन्होंने लड़ाई कराई है, इन्होंने गिबत की होगी। तो वाकई इस रिवायत को मैं और आप जुबानी याद कर लें, करना चाहते हैं, मन समता नजा, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम इस पे अमल करेंगे। अगली रिवायत देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन बिसर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपनी जुबान का मालिक है, यानी इसे गलत इस्तेमाल से रोकने की कुदरत रखता है, पहली खूबी है उसकी ये। दूसरी खूबी के जिसका घर इसे काफी है और जो अपने गुनाहों की शामत से घबरा कर रो पड़ा, ठीक है? तीन चीजें, और यही बात आपको अगली हदीस में अल्लाह के नबी की नसीहत के तौर पर उकबा बिन आमिर से मिलेगी। रिवायत करते हैं उकबा बिन आमिर कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, निजात क्या है, यानी किस चीज के सबब निजात होगी? तो आपने फरमाया, अमसिक अलैक लिसानक, अपनी जुबान को रोके रखो, पहली बात। वल यसाका बैतुका, और काफी हो तुझको तेरा ही घर, यानी तेरा घर काफी हो, यानी फालतू घरों घर से ना निकला कर। और देखिए, औरतों को नहीं कह रहे, मर्द को कह रहे हैं कि बिला मकसद घर से ना निकला करो। और तीसरा काम, वब की अला खती अतिका, और रोया कर अपनी खताओं पे। अब आप मेरे साथ दोहराएंगे एक एक लफ्ज को, अमसिक अलैका लिसानक वल यसाका बैतुका वब की अला खती अतिक, ठीक है? तो तीन चीजें इन दोनों रिवायतों से मिलती हैं। पहली चीज यह है कि जुबान को रोको। देखिए, अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी है, जुबान को रोको, जुबान का काबू। फिर दूसरी चीज के बिला जरूरत घर से ना निकलो। अब आप देखिए कि औरतों को तो अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कुरान में फरमा दिया, वकर्न फी बुयूतिकुन, अपने घरों में करार पकड़ो, लेकिन मर्दों के लिए क्या हुक्म है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जरूरत के तहत तो मर्द भी निकलेगा तो औरत भी निकलेगी। तबीयतन और मिजाजन अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर घर से बाहर जाना ज्यादा रखा है औरत की निस्बत। आम औरत जिसका मिजाज बिगड़ा ना होना, तो आप देखेंगे कि वो घर में रहना पसंद करती है। एक से दो दफा आपको जाना पड़ जाए ना घर से बाहर, तो घर के काम ही नहीं खत्म होते, सच है कि नहीं? और अल्लाह ना करे अगर आप बाजार चलेगी तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा। बहुत टू मच मिक्सिंग, लोगों को मिलना, इख्तलात, मन्नास पसंदीदा नहीं है, ठीक है? लेकिन मर्दों के लिए अब हमारे जिंद में क्या, किधर है, बस शाम को निकल गए, दोस्तों के साथ बैठे हैं, चाय है, चान लिया है, पान है, पसंदीदा नहीं। जरूरत से निकले, वक्त पे निकले, वक्त पे घर से आए, घर में आए। तो इसके लिए भी हमें थोड़ी सी अपनी सेटिंग से करनी पड़ेगी। हमारे घरों के आजकल माहौल बहुत खराब है, इस लिहाज से हो गए सोने और जागने के वक्त ठीक नहीं रहे। अगर हम नमाजों के औकात को अपने सोने और जागने की दलील बना ले, फजर से पहले जागना और ईशा के फौरन बाद सोना, ये दो मेयार बना ले, आज आप इसकी अपनियत करें। क्योंकि अभी तक जो हमारी चेकलिस्ट है उसमें जुबान आई है, प्राइवेट पार्ट की बात आई है, अब ये तीसरी चीज आप अपनी लिस्ट में डाल लें कि घर के अंदर रहने को आदत कैसे बनाऊंगी। अपनी और अपने शौहर और अपने बच्चों की रूटीन सेट करें। आज यकीन करें तकलीफ होती है बहुत, खास तौर पे जब हम अपने मुस्लिम मुल्कों में जाकर अपने भाई बहनों के घरों के माहौल देखते हैं। किसी के सोने का वक्त नहीं पता, आधी आधी रात गुजरती कहते अभी तो ये है, अभी तो चाय, अभी तो छाली, अभी तो आइसक्रीम खाने जाएंगे, अभी तो टिक्के खाएंगे। शादियां अब गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल्ड हो गई हैं कि 10 बजे हॉल बंद कर देते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने माल दिया है या इख्तियार दिया है वो उसको भी मिसयूज करते हैं। दो दो तीन तीन बजे आप फंक्शन से हो रहे हैं। आम दावत जो मैंने देखा है पाकिस्तान में, लोग खा के घर वापस आते हैं 1 से 2 बजे।
बहुत देर।
अब मुझे बताइए, जो 2 बजे घर आया तो जाहिर है कि कपड़े चेंज करना, घर में आके सोने की तैयारी, 1 घंटा तो लगेगा ना। फजर किधर गई? और फजर के वक्त यूं खर्राटे लोग भर रहे होते हैं, अल्लाह रहम करे, कि जानवरों की तरह आवाजें मुंह से निकलती हैं और शैतान थपकियां देके सुलाता है। चलिए हम इस उम्र में ये नियत करते हैं कि हमने अपने घर में सोने जागने के वक्त मुकर्रर करने। अब इसको एकदम जाके ना आप सादिर ना करते, करना 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 डू डू, फिर घर वाले ऑफेंड होंगे। माहौल ऐसा बनाए, फैमिली को साथ ले, कोशिश करें। चलो आप इधर अकेली आई हैं या आप में से कुछ लोग फैमिलीज के साथ भी आए, अब यहाँ ये बातें करें। चलो बच्चों ये करना है, बेटा है तो बेटे को साथ मिलाएं, शौहर है तो उनको मिलाएं, अगर फैमिली है तो फिर तो सोने पे सोगा। जैसे अब शिवाना आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली है, छोटे बच्चे भी है बड़े भी है, उनको फर्क दिखे यहाँ आकर इस चीज का कि यहाँ हम एक ट्रेनिंग सेशन पे आए हुए हैं, सोने में, बोलने में, खाने में, बैठने में, बोलने में, हर चीज में उनको मुख्तात करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आपने ये असूल बना लिया कि सारे घर के लोग फजर से पहले जागेंगे, देखिए यहाँ आप 4 बजे उठ के जाते हैं ना, लाइनें लगती हैं, कितनी मुश्किल से हरम में पहुंचते हैं, तो फिर जाके कहीं आप तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर फजर के लिए इंतजार करते हैं, फिर सनराइज तक आते हैं ना, तो क्या ये सारा काम आप पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका या कनाडा या लंदन नॉर्वे जाके नहीं कर सकते? अल्लाह का घर इधर है, अल्लाह तो हर जगह है। यहाँ इमाम साहब के पीछे आप नमाज पढ़े हैं, ठीक है ये इमाम काबा है, लेकिन आपकी मस्जिदों के इमाम तो हर जगह है। मुझे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं लगता यहाँ आके। ठीक है सब एक माहौल होता है, यही जिंदगी पीछे भी है, यही वहां भी आपकी जिंदगी की रूटीन बनती है, लेकिन जो ये जो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है ना हमारे माहौल में, इसका मतलब ये है कि हमारा आम रहने का माहौल दुरुस्त नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। इसी तरह घर में ये बात कर लें कि ईशा के बाद बिला जरूरत कोई घर से बाहर नहीं रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फ्रेंड्स, भाई बहन अगर उसी मुल्क में शहर में रहते हैं उनको बता दें कि कहीं दावत होगी फुलागा, मेरी डेडलाइन 10 o'clock है, मैं वापस आ जाऊंगी, आप सब बैठे मैं जा रही हूँ, जल्दी जाएं, खाना जल्दी खुलेगा। बिलीफ में अगर आप एक दावत में ऐसा करके आ गई ना, तो आप देखिए अगली दावत का टाइम खुद ब खुद ही सब 10 नहीं तो 10:30 पे आ जाएगा, और 1-2 मौकों के बाद सारे ही कहेंगे कि अब एक उठ गया तो हम भी चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है महफिलों में, एक उठ के जाता है ना फिर बाकियों का भी दिल नहीं लगता। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमने अपने घरों के अंदर रहने को रखना है। तीसरी चीज अब आप अपनी उस लिस्ट में, यानी ये नंबर 4 आएगा आपकी लिस्ट में, और वो क्या है कि अपने गुनाहों पे रोना। आप सोचिए, मैं इसको पढ़ते हुए खुद से ही पूछ रही हूं, आप भी पूछें, कब आखिरी बार मैं अपने गुनाह पे रोई थी? हम कब रोते हैं? अपनों की जुदाई पे रोते हैं, जिस समय दर्द होता है तो रोते हैं, हम माली परेशानियों पे रोते हैं, शौहर की किसी बात पे रोते हैं, लोगों की बातों के तानों पे रोते हैं, 100 रीजंस है ना हमारे पास रोने की, ये नहीं है तो रोते हैं, वो नहीं है तो रोते हैं। कब आखिरी बार हम अपने गुनाहों पर रोए? मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें अल्लाह के नबी की सच्चाई पे यकीन है? यकीन है ना, हमें पता है कि अल्लाह के नबी जो कहेंगे वो होगा। आप अपने सहाबी को कह रहे हैं कि तू निजात पाना चाहता है तो अपने गुनाहों पर रो, तो आज से अपने गुनाहों पर रोना है। अपने आप को चंद मिनट दें, इसको भी आप आदत बनाएं। कैसे? थोड़े से शुरू करें, जैसे 24 घंटे में 5 मिनट रात दिन के ऐसे रख ले, ना आपके पास आपके बच्चे हो, ना मियां, ना कोई और, आप अकेले अपने कमरे में, किसी नमाज के बाद भी हो सकता है, किसी क्लास के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसमें 100% आप फोकस्ड हो और आप उधर बैठ के सोचें आज मैंने क्या गुनाह किया। देखिए यहां गुनाह पे शर्मिंदगी पे रोएगा कौन? जिसको याद होगा गुनाह किया। हम चूंकि इतने सारे कर चुके होते हैं, अब हम कहते हैं आप गुनाह भी करते हैं, ऊपर शर्मिंदा है, किस किस गुनाह पे शर्मिंदा हो। सहाबा कराम का हाल ये था कि एक गुनाह होता था उनसे तो उस गुनाह के ऊपर वो घर नहीं जाते थे, अल्लाह के नबी के पास आते थे। आपने गामदी औरत का किस्सा सुना होगा, जिना हो गया, अल्लाह के नबी के पास आ गई, और जब तक हद ना लग गई चैन ही नहीं आया कि गुनाह सोने नहीं देता। फिर इसी तरह एक सहाबी थे, उनसे भी ये फेल हुआ, उन्होंने भी आकर हद लगवाई। ये क्या चीज है? हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक मौके पे देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हो को देखा उमर फारूक ने कि अपनी ज़ुबान पकड़े हुए ऐसे देखिएगा, पकड़ के तो उसको खींच रहे हैं। कहा, या अबू बकर ये क्या हो गया? कहा, ये बड़ी तेज़ घाटी हो गई, इसको अपने काबू में ला रहा हूँ। इतना वो डरते थे अपनी ज़ुबान से, अपने गुनाहों पे गम था। हंजला एक दिन जाते जा रहे हैं और कह रहे हैं, नाफक हंजला नाफक हंजला। अबू बकर मिले, कहा भी हंजला क्या हो गया? कहा, जो दिल की हालत नबी सल्लम की महफिल में होती है वो घर जाके नहीं होते, वहां से मस्जिद से निकलते हैं, बीवी बच्चों के कामों में पड़ते हैं। कहा, अच्छा ये तो मेरे साथ भी होता है, तो इसका तो मैं भी मुनाफिक हो गया हूँ। वो भी इसी गम में दोनों अल्लाह के नबी के पास पहुंचते हैं, ये गुनाहों का गम है ना लगा हुआ। और अल्लाह के नबी को जब उन्होंने अपनी कैफियत बताई तो आपने क्या कहा कि गम ना करो, जो कैफियत तुम्हारी मेरे पास बैठ के होती है, अगर आम जिंदगी में भी वही हो तो फरिश्ते तुम्हारे घरों में आके तुमसे मुसाफा करें। तो गम था ना उनको गुनाहों का, तो अपने गुनाहों पे गम। इसके लिए तरीकाकार आसानी से हम डिस्कस कर लेते हैं, कागज कलम बना लें। बचपन में भी लोगों को शौक होता है लिखने का, जवानी में तो डायरी लिखने का बहुत शौक होता है, और वो अपने किरामन कातिबीन बने होते हैं, इतने बजे उठी थी इतने बजे सोई थी, और फिर वो उन डायरियों को ताले लगा के छुपाते फिरते हैं, कोई को पढ़ ना ले हमारे नामे अमाल है। लेकिन अब आप वाकई एक डायरी बनाएं, रियली आप पढ़ना लिखना ज्यादा जानते हैं, आदी है नहीं है, नो प्रॉब्लम, और फोन पे बनाएं या किसी जगह बनाएं, अपनी डायरी बनाएं, मेरी जिंदगी मेरी किताब, सुबह से शाम तक क्या गुनाह हुए मुझसे लिखें। सोचेंगे ना आपको इतने गुनाह याद आएंगे कि कुछ तो गुनाह ऐसे होते हैं वो याद रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुनाह याद नहीं होते। चलिए शुरू में बड़े बड़े गुनाहों पे आ जाएं, फिर क्या करें उस गुनाह को याद करें। मिसाल देती हूँ कि जैसे अब यहां हम बैठे हैं, यहां हमसे क्या गुनाह हो सकता है, नेकियां करते हैं उसमें भी गुनाह होते हैं, हो सकता है चलते चलते किसी के ऊपर पाँव लग गया, किसी की जगह ले ली, किसी को धक्का दे दिया, कुछ ना कुछ हुआ ना, इसको भी याद करें और फिर रोए, फिर उस बंदे की तरफ से माफी मांगे कि अल्लाह तो उसके गुनाहों को माफ कर दे जिसको मेरी वजह से तकलीफ हुई थी। बहुत इंसानी मामलात में छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, घर वालों के साथ कई दफा हम हक तलफियां कर देते हैं, किसी के आगे बोल पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह जब हम ढूंढेंगे आदत पड़ेगी ना, तो वो जैसे दूसरों के ऐप चुनते थे ना, अब अपने चुनने हैं इंशाल्लाह। अब कहते हैं कि हजरत नूह को हजरत नूह क्यों कहते थे, इनका नाम नूह नहीं था, इनका नाम अब्दुल शकूर था, लेकिन ये अपने गुनाहों पे इतना रोते थे कि नूह से मुराद नौहा करने वाला, यानी नूह से मुराद वो शख्स जो बहुत ही रोता है। अब ये वो नौहा नहीं है जो गम और मातम में लोग करते हैं, अपने गुनाहों पे रोते थे, और हमारे असलाफ जो थे वो इतना रोते थे अपने गुनाहों पे कि उनके चेहरे पे निशान पड़ जाते थे। आप इनकी खशियत के वाकया सुनना चाहें तो लिल्लाहि मा फिस समावाति की जो तफसीर है सूरह बकरा का आखिरी रुकू है सबीलुल जन्ना में, काफी लोगों के कमेंट्स जो थे वो मैंने पढ़ के सुनाए थे कि वो कितना रोते थे अपने गुनाहों पे। हजरत उमर को एक मौके पे किसी ने कहा कि या उमर इत्ता किल्ला, तो हजरत उमर इतना रोए कि अपना गाल जाके जमीन पे चिपका दिया कि तुमने मुझे इतनी बड़ी जात से डराए। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमें भी अपने गुनाहों का गम लगा दे, और आप फील करेंगे जितना आपको अपना गम लग जाएगा ना उतना आप दूसरों से बेगम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पहली चीज क्या थी लिस्ट में?
पहली चीज थी जुबान की हिफाजत,
जुबान की हिफाजत जी सदब, दूसरी चीज शर्मगाह की हिफाजत, तीसरी चीज हमने अभी क्या पढ़ी, घर में रहने का एहतमाम करना, और अगली चीज क्या पढ़ी हमने,
अपने गुनाहों
गुनाहों पे रोना। ठीक है।